पोस्ट कर रहा हूँ। रमजान हो चुकी है मिडिल ईस्ट में और गालबन पाकिस्तान में 17वीं रमजान मुबारक है। तो ये जो तफसीर की क्लास का सिलसिला है, जाहिर है ये भी रमजान मुबारक ही की हद तक है, फिर बाद में दूसरी क्लासेस होती हैं। तो इस वजह से ये मैसेज आपके सामने पोस्ट किया है कि रमजान मुबारक के बाद भी सिलसिले को जारी रखना चाहे, क्लासेस में शामिल होना चाहे, तो ये वेबसाइट है और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो कल की क्लास के अंदर हमने एक थोड़ा सा अछूता मजमून डिस्कस किया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह यासीन के अंदर, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन कुरआन मुबीन, कि हमने आपको शेर का इल्म नहीं दिया और ये आपके मुनासिब हाल भी नहीं था। ये कुरान सिर्फ एक हिदायत नामा है, नसीहत नामा है और एक खुला हुआ कुरान है जिसको कि तिलावत किया जाता है। इसके तहत फिर बहुत सारी बातें हुई थीं। एक तो ये हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात खोली है कि कुरान को तो कोई जाहिल भी शेर व शायरी नहीं कह सकता, जिसको कि शेर व शायरी का इल्म बाकायदा ना हो वो भी इसको शेर व शायरी नहीं कह सकता। तो अरब फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम को शायर और कुरान को शेर व शायरी क्यों कहते थे? उसकी वजह दरअसल ये थी कि लफ्ज़ शेर जो है वो दरअसल खुद साख्ता मजामीन को कहा जाता है, ख्वाह वो नज़म में हो या वो नसर में हो। तो इस वजह से वो शेर कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये कलाम लेकर के आए हैं तो ये महज ख्याली अफसाने हैं, ठीक है, कि आपने अपने तरफ से गढ़े हुए हैं ये ख्याली अफसाने। या ये कि शेर का जो मारूफ मानी है, मारूफ मानी क्या होता है कि ये शेर उस किस्म के कलाम को कहते हैं जो कि अपने अंदर एक खास असर रखता है। तो कुरान को भी जब ये लोग सुनते थे तो चाहे ये तस्लीम ना भी करें, इसको माने ना भी, फिर भी इनके ऊपर एक असर होता था, ठीक है। जैसे कि एक नेक दीनदार मुसलमान, ठीक है, अल्लाह का खौफ रखने वाला मुसलमान, वो मौसीकी को बुरा समझता है, ठीक है, उसको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने मौसीकी से मना किया है सुनने से और ये हराम है, लेकिन फिर भी जब वो दीनदार नेक मुत्तकी परहेजगार मुसलमान भी अगर मौसीकी सुन ले, कान में पड़ जाती है, हम हर वक्त तो कान में उंगलियां ठूस के नहीं चल सकते ना, तो भी एक असर होता है ना, ठीक है, पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, कभी पुरानी वो मौसीकी सुनी थी, वो गाना सुना था, तो असर होना शुरू हो जाता है। चाहे आप इसको बुरा समझें, चाहे आप इसका इनकार करें, लेकिन फिर भी इनका असर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुरान का भी जो है वो उनके ऊपर असर होता था। तो इसके तहत हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया था जो कि हो सकता है अक्सर लोगों के लिए बिल्कुल ही नया हो। वो क्या था कि ये एक तसव्वुर आज के दौर के अंदर बैठ गया है कि तस्वीरों के बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो तस्वीरें इंतहाई ज़रूरी हैं और उनके यानी ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी चेक्स के लिए और सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आपको तस्वीरों की ज़रूरत है, बल्कि आपको तालीम के लिए भी तस्वीरों की ज़रूरत है। बच्चों की तालीम तस्वीरों के बगैर नहीं हो सकती। हत्ता के जो दीनी किताबें होती हैं उनमें भी जितनी ज़्यादा तस्वीरें होंगी उतना ज़्यादा बच्चे उनसे फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो ये एक नोशन है, ये एक आइडियोलॉजी है जो कि इस दौर में डेवलप हो गई है। तो हमने इसको नेगेट करने की कल कोशिश करी थी, ठीक है। तो उसके बारे में तो अगर किसी को एग्जैक्टली वही चीज़ें सुननी है तो कल की रिकॉर्डिंग ही सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दी जाती हैं। लेकिन आज उसको थोड़ा सा आगे लेकर के ये चलना था कि ये जो हमारा ट्रेडिशन है, जैसे कि कल बात को रैपअप भी किया था कि हमारा ट्रेडिशन जो है ना, ये ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन किस चीज को कहते हैं? ओरल ट्रेडिशन की तारीफ ये होती है कि ये वो ट्रेडिशन होता है, यानी ये वो मुआशी निज़ाम होता है, मुआशरती निज़ाम होता है, कि जिसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसका तरीका वो ओरल होता है, यानी जुबानी होता है। ठीक है, इस ट्रेडिशन के अंदर आपका इल्म, हत्ता के आर्ट, ठीक है, आर्ट भी, आर्ट से मुराद जो है वो सिर्फ तस्वीरें बनाना तो नहीं होता ना, आर्ट जो है वो तो यानी जैसे बिल्डिंग्स बनाने का एक तरीका होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है, ठीक है, सारी चीजें आर्ट के अंदर आती हैं। तो नॉलेज, आर्ट, आइडियाज, हत्ता के कल्चर का जितना भी मटेरियल है, वो सारा का सारा वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रिसीव होता है, परसीव होता है, ट्रांसमिटेड होता है ओरली। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इंटरनेट के ऊपर भी ये डेफिनेशन मैंने वहीं से ली है कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच नॉलेज, आर्ट, आइडियाज एंड कल्चरल मटेरियल इज रिसीव्ड, परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है समझा जाता है, एंड ट्रांसमिटेड यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल किया जाता है ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये है हमारा ट्रेडिशन दीन इस्लाम का। तो इसी वजह से कुरान ये अल्लाह ताला ने किसी और तरीके से नाजिल नहीं किया, पिक्चर बुक के तौर पे नाजिल नहीं किया। तो पिक्चर बुक के अल्लाह ताला नहीं बना सकते हैं, अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है पिक्चर बुक बनाना आज के दौर में, किसने यानी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ये बन गई है। तो पिक्चर बुक के जरिए से नहीं नाजिल किया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इसको किसी रिकॉर्डेड मटेरियल के जरिए से भी नाजिल नहीं किया, हत्ता कि किसी लिखे हुए पेज के ऊपर भी नाजिल नहीं किया लिख करके, ठीक है, बल्कि इसको ओरली नाजिल किया। इसी वजह से कुरान की तिलावत की जाती है, तला यतलू तिलावतन, अल्लाह ताला ने तिलावत फरमाई, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको सुना अल्लाह ताला से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के तिलावत फरमाई, ठीक है, चाहे जाहिरी तौर पर चाहे जो है वो एक छुपे हुए अंदाज में, और नबी अलैहिस्सलाम ने उसको सुना, ठीक है, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, यतलू अलैहिम आयाती, राइट, ये नबी अलैहिस्सलाम का पहला काम था तिलावत करना अल्लाह ताला की आयात का, और सहाबा कराम ने उन आयात को सुना। बिल्कुल इसी तरीके से ये तो कुरान की आयात थी, हदीस मुबारका भी वर्बली ट्रांसमिट हुई है, नबी अलैहिस्सलाम से जो भी यानी बातें सादिर हुई आप की जुबान मुबारक से, उनको सहाबा कराम ने सुना। हत्ता के अगर ये कहा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम की सारी बातें जो है वो सहाबा ने यानी हदीस में सिर्फ सुनी हुई बातें तो नहीं है, देखी हुई बातें भी हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो काम किए, ठीक है, या नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो काम किए गए, ठीक है, ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो सहाबा ने देखी, ठीक है, ये बातें सुनी नहीं, ये सहाबा ने देखी, लेकिन उनको आगे कैसे ट्रांसमिट किया, अगली जनरेशन ताबईन की वर्बली ट्रांसमिट किया, ओरली ट्रांसमिट किया। तो ताबईन ने सहाबा से सारी की सारी हदीसें सुनी, इसी वजह से समाअत हदीस, हदीस को सुनना, ये आज तक जारी है इस उम्मत के अंदर, हदीस जो है वो अपने असातिज़ा इकराम से सुनी जाती है, ठीक है, हमारे मदारिस के अंदर ये हदीस की समाअत का सिलसिला आज तक जारी है, और इसी के बाद जो है वो आलिमिया की सनद दी जाती है जब आप हदीसें सुन लेते हैं अपने असातिज़ा इकराम से। तो हमारा ट्रेडिशन जो है वो इस तरीके से सुनने वाला ट्रेडिशन है, ठीक है। अब ये जो है कि भाई हमारा ट्रेडिशन सुनने वाला ट्रेडिशन है, तो अब क्या करें भाई, मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं, इसके अंदर खैर भी बहुत है, तो खैर को तो हमने यानी दूसरी चीजों के मुकाबले में इसमें ज्यादा खैर है, तो इसको तो हमने कल भी एक्सप्लेन किया था, और आपके सामने एक नॉन मुस्लिम अमेरिकन साइकेट्रिस्ट की किताब से भी कोट किया था, जिसका कोट जो है फिर हमने ग्रुप के ऊपर भेज भी दिया है। इसके ऊपर जहन में एक बात आती है कि जी कहते हैं ना कि ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ठीक है, कि पिक्चर जो है ना ये तो 1,000 अल्फाज कहने से ज्यादा बेहतर ये है कि आप एक तस्वीर बना दें, ठीक है, बेशक ये हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ہم یہاں پر اس تصویر کی بات نہیں کر رہے ہیں جس تصویر کو کہ آج کے دور کے اندر ایون علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھائی سیفٹی پریکاشنز کے لیے, آئیڈینٹیٹی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, کیونکہ دنیا کے اندر یہ دہشت گردی اور ٹیرورزم اور اس طرح کے یہ جو جرائم ہیں یہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو اس وجہ سے مجرموں کو پکڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور مجرموں سے بچنے کے لیے پکچر آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی ضرورت جو ہے وہ پاسپورٹس پہ بھی پڑتی ہے, آئی ڈی کارڈس کے اوپر بھی پڑتی ہے, تو ہم ان تصویروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, ہم ان کو جائز ناجائز کہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم یہ ڈسکشن نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو تعلیم دینے کے لیے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پکچرس کے بغیر تعلیم ہی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, تو ہم نا جہاں پہ تو ضرورت ہے اس کے لیے علماء سے ہمیں بات کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ایسی ضرورت ہے کہ یہاں پر تو ہم اس کے بغیر بالکل بھی کام نہیں ہو سکتا, لیکن ہم یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو سٹوریز ہوتی ہیں نا, تو سٹوریز کو پکچر کے ذریعے سے ٹرانسمٹ کرنا اس کو جو ضروری سمجھ لیا گیا ہے, اس کی تو کوئی سیفٹی کاز نہیں ہے نا, سیفٹی ریزن نہیں ہے نا اس کا, اس کے لیے تو کوئی یعنی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, پکچر سٹوری بکس بنانا, ٹھیک ہے, تو اس میں کون سی سیکیورٹی آ گئی, اس میں کون سی سیفٹی آ گئی, تو ہماری ڈسکشن جو ہے نا وہ صرف اس کے اراؤنڈ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ جو نوشن ہے اے پکچر از ورتھ اے تھاؤزینڈ ورڈز, ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایجوکیشن کے اندر بچوں کو بچوں کی برین ڈیولپمنٹ کی جہاں پر بات آئے گی تو وہاں پر آپ پکچر جو دے دیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ 1000 ورڈز کے برابر ہو جاتی ہے اور اس سے پھر مزید کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ان کے لیے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کچھ سوچے بھی صحیح, کچھ ان کی امیجنیشن ڈیولپ بھی ہو, وہ برین کے اپنے ڈفرینٹ پارٹس کو جو ہے وہ استعمال بھی کریں, ان سب کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو بظاہر جو ہے وہ یہ ورڈ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا اٹریکٹو لگتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہی بات ہمیں بتا رہی ہے کہ پکچر استعمال نہ کریں, ورڈز استعمال کریں, ٹھیک ہے, یعنی بات کریں اپنے بچوں سے, بچوں کو بات سنائیں, اپنی کہانیاں سنائیں, انبیاء کی کہانیاں سنائیں, صحابہ کی کہانیاں سنائیں اور ان سے جو ہے وہ اچھے موضوعات کے اوپر ڈسکشن کریں, اس سے ان کی برین ڈیولپمنٹ ہوگی اور ان سے ان کے اخلاق ڈیولپ ہوں گے, اور سب سے زیادہ بڑھ کر کے جس کی کہ ہمیں بہت شدید اس دور کے اندر ضرورت ہے, جو کہ ہم ختم تقریباً ختم ہو چکی ہے وہ بات, وہ کیا ہے کہ جب والدین بچوں سے بات کرتے ہیں, بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وقت دیتے ہیں, تو اس سے ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے والدین اور بچوں میں, اعتماد اور محبت, اور یہ اعتماد اور محبت جو ہے نا اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے, لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر والدین کے اوپر اعتماد نہ ہوا, محبت نہ ہوئی, تو والدین بچوں کو جو اچھی چیز بتانا چاہ رہے ہیں بچے اس کو اہمیت ہی نہیں دیں گے, بچے والدین کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے, بچے والدین پر ٹرسٹ نہیں کریں گے, بلکہ وہ یہ ٹرسٹ اور محبت جو ہے وہ کہیں اور ڈھونڈیں گے, کسی اور جگہ سے جہاں پر کہ ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہوگا محبت کا, لیکن حقیقت میں وہ محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے, ان کو آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, کوئی آپ کے بچوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے, وہ دھوکہ دے رہے ہوں گے کہ ہم تو تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں, ہم تو تم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں, پھر اس دھوکے کے بہانے وہ آپ کے بچوں کو بری باتیں سکھائیں گے, ٹھیک ہے, جیسے کہ تقریباً ہر جگہ یہ ہو رہا ہے, انسٹیٹیوشنلی بھی یہ ہو رہا ہے اور انڈیویجولی بھی یہ کام ہو رہا ہے, تو والدین کا یہ ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, جب والدین بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, سٹوریز بھی بتاتے ہیں اور ان سے ویسے ڈسکشن بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے بے شک آپ کسی کتاب کو ایز اے ریفرنس استعمال کر لیں, کوئی سٹوری کی کتاب لے کر کے بچوں کے ساتھ روزانہ کسی نہ کسی ٹائم پہ بیٹھ جائیں, 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, رائٹ, کوئی اس کے اندر ٹائم کی قید نہیں ہے, اور اس بک کے بہانے ان سے بات کریں, یہ نہیں کہ صرف بک میں جو ہے وہ ادھر سے ادھر لے کر کے پڑھ لیا, خالی اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھ دیا اور بچوں نے سن لیا بس, نہیں, جیسے کہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی کو ہم نے اپنے مشائخ سے یہی سیکھا ہے, ایک آیت کو آپ کے سامنے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس ایک آیت کے اندر ایک لفظ کے اوپر پھر لمبی بات ہوتی ہے, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, کبھی آپ ہم سے سوال کرتے ہیں, اس کے اوپر جتنے موضوعات اور ذہن میں آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالتے ہیں, ہم سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم معارف القرآن کو ایک ریفرنس بک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی ہم صرف معارف القرآن کی باتیں نہیں کر رہے ہیں, ہم آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, हम आपको इंस्टिगेट भी कर रहे हैं, आपकी अपनी थिंकिंग को स्टिम्युलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि आप हो भी रहे होंगे, बाकी हमें तो नहीं पता आप पीछे क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं मालूम कि किस तरह बैठे हुए हैं, क्या सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के हवाले भाई, ठीक है, हम हर चीज का तो ख्याल नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से ना आपको भी अपने बच्चों के साथ वक्त लगाना होगा, 1 घंटा, 1 घंटे की तफसीर की क्लास में कितनी सारी चीजें डिस्कस हो गई ना, उसी तरीके से बच्चों के साथ टाइम लगाएंगे तो न जाने क्या क्या चीजें जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि आप बच्चों से बात कर सकते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर, या ये कि जब बच्चों से आप सवाल करेंगे, ठीक है, बच्चों से डिस्कशन करेंगे तो बच्चे खुलेंगे फिर आपके सामने, वो अपने आइडियाज आपसे डिस्कस करेंगे, और फिर आपको अंदाजा होगा कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या बातें चल रही थी जिनका आपको वहमो गुमान भी नहीं हुआ था, कभी कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि आपके बच्चों में के जहन में ये बातें चल रही हैं, ये ख्यालात चल रहे हैं, ठीक है। तो किताब को तो सिर्फ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है, गोया कि आपके इस डिस्कशन को ना एक सिमत पे रखने के लिए वो किताब जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट थिंक आउट लाउड जिसको कहते हैं ना, थिंक ओपनली आउट ऑफ द बॉक्स आउट लाउड, ठीक है, हर चीज जो कि जरूरी है, जो कि हमारे शरीयत के हिसाब से है, हमारे दीन के हिसाब से है, ठीक है, और अदब और इखलाक के हिसाब से, वो सारी बातें डिस्कस करें अपनी औलाद के साथ, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बड़ा अहम सवाल, वो डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। वो सवाल क्या है जो कि हर एक के जहन में आता ही होगा कि भाई इस दौर के अंदर हम पिक्चर बुक से और पिक्चर से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, राइट, ये तो इम्पॉसिबल है कि ऐसी किताबों से अपने बच्चों को बचा सकें, ठीक है। तो इसका मैं आपको पहले जवाब देने से पहले ये बता दूं कि ये आज जो आपके सामने पिक्चर बुक्स के खिलाफ इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, मेरे अपने घर में पिक्चर बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं, बल्कि अभी शायद मैं जाके मजीद खरीद के भी लेकर के आ जाऊं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके बगैर जो है ना इस वक्त बुक्स मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऐसा यानी मामला हो गया है कि बिल्कुल तकरीबन ये वही मामला हो गया है जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कोई भी सूद से नहीं बच सकेगा, सूद से कोई भी नहीं बच सकेगा, सूद की गर्द जो है वो हर एक तक पहुंचेगी। तो ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर चीज के बारे में तो हमें तफसीली अहादीस नहीं बताई ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक चीज के बारे में बात बता दी होती है, लेकिन हम उसी चीज के ऊपर बाकी चीजों को भी कयास कर सकते हैं। सूद वाहिद चीज नहीं है जिसकी गर्द हर एक तक पहुंचेगी, इस जमाने में और भी ऐसे हराम चीजें हैं और बुरी चीजें हैं जिनसे कि आप बचना चाहने के बावजूद नहीं बच सकते, ठीक है। तो पिक्चर्स भी ऐसे ही लगता है कि तकरीबन पिक्चर्स भी ऐसी, अगर चाहे बहुत मेहनत करने से बचा भी जा सकता है, मैं अभी तो अपनी मिसाल मैंने इसलिए दी थी कि भाई ये तो यानी इतना आसान काम नहीं है, अच्छा खासा टाइम इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो फिर हम आपको ये सारी बातें बता क्यों रहे हैं जब हमें पता है कि कोई फायदा नहीं है इनका? नहीं, हमें पता है कि फायदा है इसका। किसी चीज से बचना ये एक अलग चीज होती है, और किसी चीज के नुकसान का पता होना ये एक अलग चीज होती है। इसकी अल्लाह ने दिल में एक मिसाल डाली है, खवातीन के भी इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगी। आजकल आप लोग जो है यकीनन लोगों ने सुना होगा बहुत सारे डॉक्टर्स को बात करते हुए, ठीक है, कि ये जो सफेद चीनी होती है वाइट शुगर, ये इंतहाई खतरनाक चीज है सेहत के लिए, इंतहाई मुजर चीज है। सफेद चीनी से तो कैंसर पैदा होता है, कैंसर सेल्स जो होते हैं दे फीड ऑन वाइट शुगर, ठीक है ना, सफेद चीनी के ऊपर तो वो कैंसर सेल्स जीते हैं, राइट। तो सफेद चीनी इतनी खतरनाक चीज है, और आप वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप सफेद चीनी छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन क्या आप सफेद चीनी चीनी छोड़ सकती हैं? छोड़ सकते हैं लोग सफेद चीनी? हाँ, आप क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बहुत अपने ऊपर जबर करके आप चाय में सफेद चीनी डालना छोड़ देंगे, ठीक है, या हो सकता है चंद खाने की चीजों में आप सफेद चीनी डालना छोड़ दें, ठीक है। लेकिन सफेद चीनी इस वक्त तकरीबन हर चीज में मौजूद है, हर चीज में, मीठी हो या मीठी ना भी हो फिर भी सफेद चीनी उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, सफेद चीनी के नुकसान को नुकसान समझना छोड़ दें, उसका नुकसान लोगों को बताना छोड़ दें कि भाई इससे बच तो सकते नहीं है, तो इस वजह से इसको नुकसानदेह कहने के बजाय इसको फायदेमंद कहना शुरू कर दो। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? क्या मर्द भी ऐसा करेंगे? कोई अकलमंद आदमी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। वो कहेगा भाई बच नहीं सकते, कम अज कम नुकसानदेह को नुकसानदेह कह तो सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं इसको कम करने की,
जितना मुमकिन हुआ उतना कम करने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है अगर हम कोशिश करते रहें तो हम कामिल तौर पर नहीं बच सके, लेकिन शायद हमारी आगे आने वाली नस्लें बच सकें इससे। तो इस नियत के साथ हम बुरी चीज से को डिस्कस करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से पिक्चर्स का भी मामला है, ठीक है, कि उनसे भी जो है ना वो अगर हम बच नहीं सकते कम से कम उसको बुरा तो समझ सकते हैं ना, और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और मोमिन जो है वो तो वैसे भी हर काम के अंदर अल्लाह से मदद मांगता है, तो अल्लाह से मदद तो मांग सकते हैं इसके लिए ना। तो इस तरह से सोचें इस बात को, तो फिर जो है ना ये सारी की सारी डिस्कशन जो हमने आपके सामने करी है ये बेफायदा आपको महसूस नहीं होगी। किसी ने मैसेज लिखा है, मैं जरा पढ़ लेता हूँ, अगर कोई सवाल है क्लास रिलेटेड। बच्चों को कैसे अपने दीन से क्लोज किया जाए जब वो मैक्सिमम टाइम स्कूल में गुजारते हैं एंड देयर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज अमेरिकन। भाई अनफॉर्चुनेटली क्या कहूं मैं इसके ऊपर, आसान बात तो यही कह सकता हूं कि बच्चों को अच्छे माहौल में लेकर के आए। बेशक वो अमेरिकन स्कूल में आपने डाल दिया है उनको, लेकिन हफ्ते में एक दफा दो दफा कहीं पे कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं पे कोई क्लास होती है दीन से रिलेटेड, तो वहां पर लेकर के आना चाहिए, ठीक है, बाकायदगी से लेकर के आना चाहिए। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, लेकिन अगर ये भी ना करें तो फिर अब आपको कोई जादू टोना, और ये पढ़ने वाले वजीफे तो हम वैसे भी नहीं बताते। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स पुराने हैं उनको एक बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि आजिज ये पढ़ने पढ़ाने फूकने फाकने के वाले तरीके नहीं बताता, ठीक है। हाँ ये गलत नहीं है, ये भी एक तरीका होता है, लेकिन इन तरीकों से फायदा जो होता है ना वो ऐसे नहीं होता जैसे कि हम समझते हैं, ठीक है। तो भाई कुछ करना पड़ता है उसके लिए, तो दुआएं मांगनी होती हैं, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने अमेरिकन स्कूल में दाखिल करा दिया, मेरी इस गलती को माफ कर दे, इस गलती के जो असरात मेरी औलाद के ऊपर पड़ रहे हैं कि वो दीन से दूर हो रही है, दीन की मजालिस में नहीं जाना चाहती, दीन के तरीके से अपने सोच को नहीं बनाना चाहती, अल्लाह इस असर को जो है वो आप मिटा दें, आपके लिए तो कोई चीज मुश्किल नहीं है ना। तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। इसके ऊपर एक बात याद आई, जो जिसको जिसको हम अमेरिकन सिस्टम बड़ा अच्छा समझते हैं ना, तो चूंकि बात भी इसी टॉप इसी तरह की बात हो रही है, तो जरा आपके सामने ये एक बड़ी मजेदार फैक्ट है, आप किसी ने सुना भी होगा कि ये जो जिनको हम बड़ा अच्छा समझते हैं और बड़ा जो है ना वो इखलाक और सच्चाई का अलमदार समझते हैं, तो उनकी एक बड़ी मजे की बात, ठीक है, पिछले दोनों जो रिसर्चर्स इन्होंने एक्सपोज करी, रिसर्चर्स राइट, इन्होंने मंजर आम पे लेकर के आई, तो उससे क्या पता लगा कि ये जो है ना वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, खवातीन ज्यादा होती हैं तो खवातीन की मिसालें अल्लाह ताला दिल में भी डाल देता है, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, तो ये वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं अभी चंद थोड़ा अरसा पहले तक इसके ऊपर क्या शोर मचाते थे कि जी ये आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, सेहत के लिए ना ये कॉर्न ऑयल और न जाने और दूसरे कौन कौन से इन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी हैं आपके सेहत के लिए, और ये जो एनिमल फैट है ना, ये एनिमल फैट जो है इससे कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है और इससे जो है ना वो हार्ट डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा इनकी फूड एंड ड्रग एसोसिएशन अमेरिका की और इनके अंदर सारी यही बातें होती थी, एनिमल फैट बुरी चीज होती है। तो अब जो है ना, अब इनकी पता नहीं प्रायोरिटीज क्या, ये नहीं कि क्या चेंज हो गई इनकी प्रायोरिटीज, ये नहीं है कि अब ये इन्होंने अपने झूठ से तौबा कर ली है, अब ये सच बोलना शुरू हो गए, ये भी कोई ना समझे ये झूठ से तौबा करके अब सच बोल रहे हैं, नहीं, कल को ये भी पता लगेगा कि ये भी शायद झूठी बोल रहे थे, किसी और नुक्ता नजर से इन्होंने इस बात को प्रेजेंट किया था। अब इनकी जो रिसर्चेस आई हैं वो क्या बता रही हैं कि असल में जो ये सारा का सारा ड्रामा खेला था ना इन्होंने अपने साथ भी और सारी दुनिया के साथ, ये एनिमल फैट बुरा होता है, उसकी रीजन ये थी कि अमेरिका के अंदर कॉर्न प्रोडक्शन जो है ना, कॉर्न भुट्टा राइट, इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मिलियंस ऑफ एकर्स होंगे इनके जो कि भुट्टा उगाते हैं खाली, तो भुट्टा जो है वो कॉर्न से ये क्या करते थे, कॉर्न से जो है कॉर्न फ्लेक्स बनाते थे, ठीक है, तो कॉर्न फ्लेक्स जो है उन्होंने सारी दुनिया में बेचना होता था, तो इस वजह से ब्रेकफास्ट के ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे कि ब्रेकफास्ट बड़ा जरूरी है और कॉर्नफ्लेक्स के बगैर ब्रेकफास्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन भुट्टे के अंदर सिर्फ वो दाने तो नहीं होते ना, मकई के दाने, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, उसका जो है वो क्या कहते हैं उसको, भूसा जिसको कहेंगे उर्दू में। तो इनको ये था कि भाई इतना सारा भुट्टा जो होता है ना, उसके मकई के दाने तो चलो हम कॉर्नफ्लेक्स बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी चीजों को हम किस चीज में इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ये तो हमारा बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, हम तो इससे भी पैसे बना सकते हैं, ठीक, बाकी चीजों से भी हम पैसे बना सकते हैं, तो हम कैसे पैसे बनाएं इन चीजों से। तो इसलिए इन्होंने अपने जो बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स थे, मेडिकल डॉक्टर्स थे ना, उनको रिश्वत दे दे करके उनसे ये स्टडीज पब्लिश करवाई, झूठी स्टडीज, के जो एनिमल फैट ये लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे सुअर का फैट इस्तेमाल करते हो, चाहे गाय का की चर्बी इस्तेमाल करते हो, चाहे किसी और एनिमल की, ये इंसानी सेहत के लिए मुजर है, डेंजरस है इंसानी सेहत के लिए, इससे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज होती हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टडीज उन्होंने पब्लिश करवाई। पहले इन्होंने अमेरिका का खुद मिजाज बनाया, दिमाग बनाया अमेरिकन सिटीजन का, कि ये चीजें आपके लिए मुजर है। ठीक है, और फिर जाहिर है जब अमेरिकन सिटीजन का दिमाग बन गया तो फिर बाकी दुनिया में भी अपने उन्होंने अपनी इस रिसर्च को फैलाया कि ये चीजें जो है ना एनिमल फैट आपके लिए मुजर है, ताकि लोग जो हैं, अच्छा उसका उन्होंने ऑल्टरनेटिव भी पेश किया कि जी हम आपको क्रिस्को ऑयल बेचते हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल था। ठीक है, ये आपकी सेहत के लिए बड़ा जबरदस्त है और ये मेडिकल साइंस से प्रोवेन है। इस तरीके से उन्होंने अपने ये जो वेजिटेबल ऑयल्स बनाए थे ना, इनको फिर मार्केट में बेचना शुरू किया, और लोगों को क्या पता भाई क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, उन्होंने तो डॉक्टर्स की रिसर्च के ऊपर ही बिलीव करना है ना, उन्होंने इसको खरीदना शुरू कर दिया, एनिमल फैट से जो है वो दूर हो गए। ठीक है, तो एनिमल फैट की इंडस्ट्री उनके लिए अहम नहीं थी, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सके यानी पब्लिक माइंड को, जबकि वेजिटेबल इंडस्ट्री जो थी उसके पास ज्यादा पैसे थे, उन्होंने पब्लिक माइंड को इन्फ्लुएंस कर लिया झूठ बोल बोल करके। ठीक है, इस तरीके से ये आधी सदी से ज्यादा अपने अवाम को और सारी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे। ठीक है, और अब जा करके ना इनकी कोई और इनका कोई जो भी हिकमत इनके पास आई है वो ये है कि जी अब इन्होंने इस बात को रिवर्स करना है, अब इन्होंने एनिमल फैट इंडस्ट्री को जो है या तो प्रमोट करने किसी वजह से या वो जो भी, तो अब जो है ना इन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो गलती हो गई थी, वो तो जो है ना डॉक्टर से गलती हो गई थी, और कुछ और लोग जो है जो जरा जरा ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि गलती वलती कोई नहीं हो गई थी, उन्होंने झूठ बोला था असल में। ठीक है, तो ये है इनकी हकीकत। अब हम इनकी अंग्रेजी की खातिर और इनकी सो कॉल्ड जो है वो दुनियावी तरक्की की खातिर जो है ना हम अपने बच्चों को इनके हवाले कर देते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो फिर तो बहुत बड़ी ज्यादती हमने कर दी है ना, तो हमें इन सब चीजों से जो है ना तौबा करनी चाहिए, हमें जरा देख देख करके अपने बच्चों का इंतजाम करना चाहिए कि हम इसको उनको किसके हवाले कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो है जो कि बेस्ड ऑन दुनियावी तालीम हो उसके अंदर होती हैं मसले मसाइल, तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन हम इतना तो देखते हैं ना कि कहाँ मसले मसाइल सबसे ज्यादा हैं तो वहां पर नहीं भेजते, जहां मसले मसाइल कम होते हैं वहां पर अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इस तरीके से ना मेजर कर लेना चाहिए, और इस वजह से बहुत बार बार हम ये बात कहते हैं कि ये हर इंसान को वही तो नहीं नाजिल होगी ना कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज गलत है, तो इस वजह से हमें मशाइख के साथ रابطे में रहना चाहिए, उनके साथ मशवरा करते रहना चाहिए कि जी मैं ये कदम उठाऊं या ना उठाऊं। अल्लाह ताला ने उनको ये एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दिया होता है कि उनको अंदाजा होता है कि जी कहाँ पर क्या फायदा है कहाँ पर क्या नुकसान है, कहाँ पर ज्यादा नुकसान है कहाँ पर ज्यादा फायदा है, कहाँ पर कम है कहाँ पर कम नुकसान है फायदा है, तो फिर वो उस हिसाब से हमें मशवरा दे देते हैं। तो इस तरह से ना फिर हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाते हैं। अब बहरहाल जो भी कर लिया सो कर लिया, अल्लाह ताला से दुआ तो मांग सकते हैं, उसके तो दरवाजा अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुआ। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तो यानी ये इसके तहत हमने जो मुआशी निज़ामों के बारे में कल बात करी थी कि दुनिया के अंदर दो मुआशी निज़ाम जो कि पिछली सदी के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़े, उनमें से एक तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म था, जो कि ये कहता है कि मजदूर जो कि मेहनत करके काम करता है तो मिल्कियत उसकी होनी चाहिए। ठीक है, और कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि जिसका सरमाया है, ठीक है, जो अमीर कबीर इंसान सरमाया अमीर के पास ही होता है तो सरमायादार की ओनरशिप होती है। ठीक है, तो अब सरमायादार अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएगा ताकि उसका सरमाया और बढ़े, तो इसी तरीके से मार्केट इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये दो अलग अलग इजम्स हैं, अलग अलग नजरियात हैं, लेकिन इस्लाम का नजरिया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ और तीसरा नजरिया है वो ये है कि जिसने तख्लीक किया है, तख्लीक करने वाला, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, इसको तख्लीक कहते हैं। ठीक है, तो जिसने तख्लीक किया है ओनरशिप उसी की है, मिल्कियत खालिक की है, अल्लाह की है। तो भाई जिसकी मिल्कियत होती है उसी के उसूल चलते हैं ना, उसी का हुक्म चलता है ना। ठीक है, तो इस वजह से इस्लाम जो है वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चीजों की मिल्कियत की इजाजत देता है। आप किसी चीज के मालिक हो जाए तो अब आपकी मर्जी नहीं है कि आप उसको जैसे भी चाहे इस्तेमाल करें, आप उसको जैसे जैसे कल मिसाल दी थी कि अल्लाह ताला ने मवेशी का हमें मालिक बना दिया, ठीक है, लेकिन क्या मवेशी को आप यानी किसी बैए फासिद के तरीके से किसी को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, यानी जो बै के तरीके अल्लाह ताला ने जायज करार दिए हैं, बै का मतलब होता है बेचना, ठीक है, खरीदो फरोख्त के जो शरीयत ने उसूल बताए उन शरीयत के उसूलों के तहत ही आप अपने मवेशी को बेच सकते हैं, आप गैर शरी तरीकों के जरिए से अपने मवेशी को बेच भी नहीं सकते, हालांकि आप उसके मालिक हैं। क्यों? इसलिए कि असल मिल्कियत जो है वो अल्लाह की है, आपको तो उसने टेम्प्रोरी मालिक बनाया, तो अल्लाह के बताए हुए शरी उसूलों के मुताबिक आप अपने मवेशी को खरीद और फरोख्त कर सकते हैं, उसी तरीके से आप जबाह नहीं कर सकते उसको अपने तरीके से, यानी अपने तरीके से उसको काट करके खा नहीं सकते कि बीच में से काट दिया, जैसे कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर होता है कि जी गाय को बीच में से दो टुकड़े कर दिया जाता है और उसके बाद फिर उसकी बोटियां मशीन के ऊपर बना देते हैं, राइट, या फिर उसको पूरा उसका सर उड़ा दिया और फिर उसकी जो है वो बोटियां बनाई, या उसको जो है वो दूसरे तरीकों से जो भी बहुत सारे तरीके लाए जाए, नहीं, आप उसको जो इस्लामी शरी तरीका है जो उसके उस मवेशी के परवरदिगार ने अपने रसूलों के जरिए से बनाया है कि इसकी गर्दन की चार रगों को आपने काटना है, उससे ज्यादा नहीं काटना, ठीक है, उससे कम जो है वो तीन तक की इजाजत है, तीन रगों को काट दें तो भी जबा हो जाता है लेकिन उससे कम की इजाजत नहीं। तो ये तरीका किसने बताया मवेशी को काटने का? मवेशी के असल मालिक ने बताया, अगरचे के मालिक आप हैं लेकिन आप मवेशी की जान अल्लाह के बताए हुए तरीके के बगैर नहीं ले सकते। इसी वजह से अगर आप उसकी जान अल्लाह के बनाए हुए तरीके के बगैर ले लें तो वो मवेशी आपके ऊपर हराम हो जाता है, अब आप उससे फायदा नहीं उठा सकते, हालांकि आप उसकी मिल्कियत, उसके मालिक थे, उसको आप उसके गोश्त को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मिल्कियत अल्लाह की है, ठीक है। अब ये अल्लाह की मिल्कियत जो है, ये मिल्कियत की तफसील कैसे, यानी क्या है अल्लाह के अहकाम? जैसे कि अभी तो हमने आसान आसान से एक ज़बह करने वाला तरीका, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आप किसी कसाई को भी समझा सकते हैं, राइट, कसाई सीख लेते हैं ज़बह करने के सही तरीके को, फिर वो ज़बह करना शुरू कर देते हैं, तो ज़बह करना तो इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप किसी आलिम से सीख करके फिर ज़बह करना शुरू कर दें, लेकिन जो बै और शरा के उसूल हैं ये तो बहुत ज्यादा तफसीली हैं, इनके अंदर तो बड़ी डिटेल है, जो आलिम कोर्स करते हैं उनको अंदाजा होगा, फिका की किताबें कुदूरी शरीफ पढ़ते हैं, हिदायत शरीफ पढ़ते हैं, उसके अंदर बै और शरा के कितने सारे तफसीलात हैं जो कि हदीस से हमें पता लगते हैं, कुरान के आयात से हमें पता लगते हैं, तो ये इल्म जो है ना ये सिर्फ उलमाए दीन के पास होता है, क्योंकि उन्होंने फुल टाइम डेडिकेशन के साथ ये जो मामलात होते हैं उनके शरी अहकाम को पढ़ा होता है, मुराबिहा क्या चीज होती है, मुदारबा क्या चीज होती है, बै सलम क्या चीज होती है, रिबा क्या होता है और क्या रिबा नहीं होता है, राइट, खियार की शराइत क्या होती है, ये सारे अल्फाज कभी आपने सुने? लेकिन आलिम दीन ये सारी चीजें पढ़ता है, तो खरीदो फरोख दुनिया के अंदर जो जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कैसे चलानी है ये कौन बता सकता है? सिर्फ और सिर्फ आलिम दीन बता सकता है, ठीक है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है ये सिर्फ आलिम दीन बता सकता है, ठीक है। तो दूसरे सिस्टम जो है ना, कैपिटलिज्म वाले हैं और कम्युनिज्म वाले हैं, वो तो ये नहीं चाहते कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जो है वो दुनिया के अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हों, ठीक है, वो तो अपने तरीके के मुताबिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, अपने तरीके के मुताबिक काम करना चाहते हैं, तो उनके रास्ते में फिर कौन रुकावट होता है? जो कि लोगों को, अवामुन्नास को ये आगाही देता है कि भाई अल्लाह के तरीके के मुताबिक चलना चाहिए और अल्लाह का तरीका ये है, एग्जैक्टली स्पेल आउट भी कर सकते हैं उलमाए कराम, हत्ता के उलमाए कराम जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बाकायदा मॉडल बना करके भी लोगों को पेश कर सकें, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक फाइनेंसिंग का मॉडल जो है वो उलमाए कराम ने स्टार्ट किया, पूरी दुनिया के अंदर वो फैला, ठीक है, तो इस्लामिक फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है ये उलमाए कराम बता सकते हैं ना, तो चूंकि उलमाए कराम के पास इतनी नॉलेज होती है और वो बाकायदा एक अल्टरनेट मॉडल भी दुनिया को दे सकते हैं अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, इस वजह से जो दूसरे सिस्टम्स होते हैं ना उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट और एक्चुअली वाहिद रुकावट वो ये उलमाए कराम होते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो जज्बाती, अवामुन्नास तो जज्बाती होती है, अवामुन्नास का क्या है, उनको तो वैसे ही कुछ पता नहीं होता, उनको आप भेड़ बकरी की तरह हाँक सकते हैं, धोखा देकर के हाँक सकते हैं, दूसरी उनको नाच गाने के अंदर लगा दें तो उनको वैसी फिक्र खत्म हो जाएगी हर चीज की, या उनको जो है वो कंफ्यूज कर दें आप दीन के बारे में तो अवामुन्नास तो वैसे ही आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उलमाए कराम को तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, इस वजह से उलमाए कराम जो है ना ये सबसे बड़ा मसला होता है इन दूसरे निज़ाम वालों के लिए। इस वजह से ये हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं उलमा के, ठीक है। और उलमा जहाँ से बन के निकलते हैं मदारिस, तो वो फिर मदारिस के पीछे पड़े रहते हैं कि ना रहेंगे मदारिस ना बनेंगे उलमा, ठीक है। तो मदारिस को ख़त्म करो, मदारिस की इसलाह करो, और ये करो और वो करो, नहीं? मसला असल में क्या होता है, असल में मकसद ये होता है कि उलमा ना रहें, ठीक है। जब उलमा ना रहेंगे तो फिर हम अपनी मर्जी चलाएंगे दुनिया के अंदर। तो आखिरी सेट ऑफ आयात जो मारुफुल कुरान के अंदर सूरह यासीन की हैं, वो पेज नंबर 410 के ऊपर हैं। 410 पेज के ऊपर आयत नंबर 76 या जिस पढ़ता है, अऊज़ु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून। के अब आप गमगीन मत हों, आप हुज़्न ना करें। हुज़्न किस चीज को कहते हैं? अंदर की जो एक फिक्र होती है ना, अंदर का खौफ या अंदर की फिक्र जो कि बाहर से इंसान को नजर नहीं आती, उसको हुज़्न का कहते हैं। तो आप गम ना करें, हुज़्न ना करें, फिक्र ना करें इनके कौलों की वजह से, इनकी बातों की वजह से, ठीक है। यानी इनकी बातें आपको गमगीन ना करें। इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना वमा युलिनून, हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं जिन चीजों को ये छुपाते हैं और जिनको ये जाहिर करते हैं। यानी ये जो बातें कर रहे हैं आपके सामने आके करें, या आपके पीठ पीछे करें, या अपने दिली दिल के अंदर जो ख्यालात आपके खिलाफ मंसूबे बांध रहे हैं, हम उन सब से वाकिफ हैं। सिर्री चीजों से भी वाकिफ हैं, जहरी चीजों से भी वाकिफ हैं, ऐलानिया चीजों से भी वाकिफ हैं। युलिनून, ऐलान करते हैं। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुक्फतिन फइदा हुवा खसीमुन मुबीन। अच्छा, इसमें ना पहली आयत के तहत खुलासे तफसीर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है पेज नंबर 411 के ऊपर, कि भाई ये जो आजर्दगी होती है, गम गम जो होता है ना किसी की बात के ऊपर, किसी के एटीट्यूड के ऊपर जो गम होता है, तो वो गम क्यों होता है? क्योंकि आपको उससे कोई अच्छी उम्मीद लगी हुई होती है, ठीक है, कि भाई ये ऐसे बिहेव करेगा, ये तो मेरा अपना रिश्तेदार है, मेरा अपना दोस्त है, जब मैं उसको कोई बात समझाऊंगा तो ये मेरी बात को मान लेगा, या लगी होती है। लेकिन जब वो आपकी बात नहीं मानता तो आपकी उम्मीद टूटती है। जब उम्मीद टूटती है तभी इंसान को गम होता है, ठीक है। तो इसमें लिख रहे हैं कि उम्मीद होती है मुखातब के अक्ल व इंसाफ से, ठीक है, कि भाई ये तो अकल वाला है, ये तो बड़ा इंसाफ पसंद है, मेरे मामले में तो कम से कम इंसाफ करता है क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ठीक है। तो इस वजह से उम्मीद लग जाती है कि वो मेरी बात मान लेगा। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि यानी मफहूम इसका यह है कि इन लोगों में, यानी जो काफरीन है ना, इनमें तो ना अकल है और ना इंसाफ है। क्या मतलब? कि ये अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते जैसे इनको करना चाहिए, और ना ये इंसाफ पसंद है। तो इनसे किसी चीज की उम्मीद ही नहीं हो सकती, फिर गम क्यों हो? यानी आपको इनसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, फिर आप जब उम्मीद ही नहीं लगाएंगे ना तो फिर गम क्यों हो? तो आगे दूसरे तरीके से आनंद को फिर तसल्ली है कि बेशक ये सब हम सब जानते हैं, जो कुछ ये दिल में रखते हैं, जो कुछ जुबान से जाहिर करते हैं, इसलिए वक्त मुकर्रर पर उनको उनके अमल की सजा मिलेगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरल इंसानु, क्या आपने नहीं देखा, क्या इंसान नहीं देखता, ठीक है, कि क्या इंसान नहीं देखता, अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फा, कि बेशक हमने तख्लीक किया उसको नुत्फे से, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है, नुत्फा जिसको अरबी में और उर्दू में कहते हैं, तो असल में तख्लीक जो होती है वो तो वहां से शुरू होती है। किस चीज की तख्लीक वहां से शुरू होती है? रूह की तख्लीक नहीं, वहां से शुरू होती है। जैसे क्या चीज बनती है? हमारी बॉडी बनती है, हमारा जिस्म बनता है, यानी हमारा जाहिर बनता है। हमारा बातिन तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त आलम यानी आलमुल अरवाह के अंदर बना दिया था, रूहें हमारी। तो क्या ये इंसान नहीं देखता कि हमने उसको नुक्फे से बनाया, यानी हमने उसकी जो जिस्मानी साख्त है, उसका जो दिमाग है, दिमाग भी तो जिस्म का हिस्सा होता है, तो सब कुछ जो है जिसके ऊपर वो तकब्बुर करता है और बड़ा उस घमंड करता है इस दुनिया के अंदर, देखो मैं कितना अच्छे से अपने हाथों से काम कर लेता हूँ, मैं अपने पैरों से कितना तेज दौड़ सकता हूँ, मैं अपनी आंखों से कितना अच्छी चीजों सारी चीजों को देख लेता हूँ, मेरे कान कितने शार्प हैं, मेरा दिमाग कितना शार्प है कि मैं ऐसे ऐसे जबरदस्त मंसूबे बना लेता हूँ और हर चीज को समझ लेता हूँ। ये सब का सब कहाँ से आया? एक नुतफे से तो बना है ये तो तुम्हारी हकीकत है, एक गंदे पानी के एक कतरे से। फैदा हुआ खसीम मुबीन, बस उसके बाद फिर वो झगड़ने वाला हो गया, खुल करके झगड़ने वाला। मुबीन का मतलब होता है यानी जिस तरह कुरान मुबीन इस्तेमाल हुआ कि कुरान भी एक खुली हुई किताब है, तो यहाँ पर खसीम मुबीन का मतलब ये है कि यानी खुल के झगड़ा करता है ये, बहुत बोल बोल करके, बोल बोल करके। इसलिए कि खुलने के लिए एक चीज जो इस्तेमाल होती है वो होती है इंसान की वही ओरल ओरल कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो जुबान से झगड़ा जो है ना वो इंसान ज्यादा करता है, अक्सर लोग जो है हाथ पैर नहीं चलाते, ठीक है, लेकिन जुबान जो है वो झगड़े के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुबीन से का मतलब ये है कि यानी बोल बोल करके झगड़े करने वाला, क्योंकि बोलने से वो अपना मतमय नजर जो है वो अगले बंदे के ऊपर खूब खोलता है, अपने अंदर की जो गंध है उसके अंदर नफरत है किसी के बारे में, तो वो नफरत जो है वो अपनी जुबान के ऊपर लेकर के आता है और उसका जुबान से इजहार शुरू कर देता है, इसी से झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो खसीम मुबीन यानी बोल बोल करके झगड़े करने वाला है ये, हालांकि इसकी हकीकत वो नुतफा था बस। फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक वाकये के कॉन्टेक्स्ट में ये बात फरमा रहे हैं कि वह गौरबा लना मसलन वनसिया खलका, ठीक है, एक आदमी के बारे में बात फरमा रहे हैं कि उसने एक मिसाल बयान करी। गरबा का शुरू में भी हमने पढ़ा था जब अल्लाह ताला ने उन रसूलों और उन बस्ती वालों का वाकया बयान किया था, वगरब लहुम मसलन अस्हाबुल करिया, कि आप मिसाल बयान कर दीजिए इन लोगों के लिए करिया वालों की, बस्ती वालों की मिसाल, ठीक है। तो वहां पे आपको बताया था कि मिसाल बयान करने के लिए अरबी के अंदर ना गर्बुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हालांकि गर्ब का जो लफ्ज है उसका मतलब होता है मारना, लेकिन जिस तरह अंग्रेजी में स्ट्राइक के लफ्ज को स्ट्राइक एन एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से अरबी में भी गरबा का लफ्ज जो है वो एग्जाम्पल या मिसाल बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो गरबा लना, उसने मिसाल बयान करी हमारे लिए या हम पर एक मिसाल, व नसिया खलका, और वो अपनी तख्लीक को भूल गया। तो इसका शान नुज़ूल हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अगले पेज के ऊपर लिखा है कि ये जो सूरह यासीन की ये आखिरी 5 आयतें एक खास वाकये में नाजिल हुई, यानी इनका शान नुज़ूल जो है वो एक खास वाकया था जो बाज रिवायात में उबई बिन खलफ की तरफ मंसूब किया गया है और बाज में आस बिन वाइल की तरफ। ये दोनों बड़े काफिरों के सरदार थे मक्का मुकरमा के अंदर। तो कुछ हदीसों में ये है कि उबई बिन खल्फ ने ऐसी बात कही थी और कुछ में आस बिन वाइल, ठीक है। तो हदीसें क्या होती हैं? हदीसें जो है ना ये यानी सहाबा ने जो चीजें देखी या नबी अलैहिस्सलाम से सुनी, ठीक है ना, तो उनको सहाबा ने अपने जहन में अल्लाह के हुक्म से महफूज कर लिया, अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी थी महफूज करने की, तो उनको फिर उन्होंने अगली जनरेशन में बयान किया। तो ये मुशाहिदे थे सहाबा के या शहाबा सहाबा की सुनी हुई बातें थी, ठीक है। तो अब इनके अंदर ना कुछ कुछ कहीं कहीं हमें कॉन्ट्रडिक्शंस बजाहिर नजर आती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है ना कि भाई कुछ सहाबा ने जो हदीस बयान करी, रिवायत का मतलब होता है हदीस, हदीस को की रिवायत करना, ठीक है। तो कुछ सहाबा ने कहा कि जी उबई बिन खल्फ ने ऐसी बात कही थी और कुछ ने कहा कि आस बिन वाइल ने ऐसी बात कही थी, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब तो ये हुआ ना कि भाई हदीस जो है वो यानी काबिले एतमाद चीज नहीं है, ठीक है। ये एक आम ख्याल जो है वो अवामुन नास के दिल में शैतान डालता है कि इसका मतलब ये है कि हदीस की तो कोई फिर ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, कभी कुछ उसमें लिखा होता है, कभी कुछ उसमें लिखा होता है। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए जो है ना वो हदीस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, तब कहीं जा करके ना ये जो वसवसे हदीस के बारे में जहन में आते हैं ये वसवसे रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये बड़ी तफसीली पूरा का पूरा तफसीली इल्म है ये, कि उसूल हदीस का इल्म जिसको कहते हैं, और यानी रिवायत हदीस के बारे में बहुत सारी तफसीलात हैं इसके अंदर, लेकिन आम समझ के लिए, ताकि आपके जहन में कोई ऐसी बात अभी फौरन से ना आ जाए कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए एक आसान सा जो वन ऑफ द इजी आंसर उसका ये होता है कि भाई कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वाकया जो है वो दो लोगों के साथ पेश आया हो, ठीक है, मिलता जुलता एक वाकया हो कि भाई उसने भी ऐसी बात कही थी और किसी और मौके के ऊपर दूसरे बंदे ने भी ऐसी बात कही थी, तो जिस सहाबी ने इस वाकये को सुना उसने इस वाकये को उसके नाम के साथ बयान कर दिया, और जिसने उस वाकये को सुना उसने उस बंदे के नाम के साथ उस वाकये को बयान कर दिया। तो ऐसा भी मुमकिन होता है कि जो जो हमें कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है ना, ये असल में कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, बल्कि दोनों के साथ ये वाकया पेश आया था, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हदीस जो होती है वो सारी हदीसें तो 100% यानी सही हदीसें नहीं होती है ना, ठीक है, यानी हदीस के अंदर बहुत सारे दर्जे होते हैं, तो हदीस से मुतवातर अलग दर्जा होता है, हदीस से मशहूर का उससे कम ऑथेंटिसिटी वाला दर्जा होता है, और एक होती है हदीस जिसको खबरे वाहिद कहा जाता है उसका अलग दर्जा होता है। सही हदीस और मौजू हदीस का लफ्ज तो आजकल सभी सुनते हैं, सही हदीस नहीं है जी और ज़ईफ हदीस है जी और मौजू हदीस है जी, ठीक है, तो हदीस के अंदर बहुत सारी तफसीलात होती हैं, तो इस वजह से इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये रिवायतें जो हैं वो सही के दर्जे पर ना हो बल्कि मौजू के या यानी ज़ईफ के दर्जे पर हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जो हदीस का ओवरऑल लिटरेचर है, हम इन तफसीलात की वजह से हम पूरे के पूरे लिटरेचर को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए कि उसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं, तो भाई जो सही हैं उनको तो सही कहना जरूरी है, जो मुतवातर हैं उनके ऊपर तो ईमान लाना भी जरूरी है, वरना तो इंसान ईमान वाला रहेगा ही नहीं, काफिर हो जाएगा अगर मुतवातर हदीसों का इनकार कर दे, तो उसका ईमान ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो जो गलत है उसको गलत कहना होता है, पूरे के पूरे उठा करके आप जखीरा हदीस को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। तो बहरहाल ये जो वाकया है तो ये दोनों नामों के साथ मंसूब है, तो फरमाया कि इसमें भी कोई बोध नहीं कि दोनों से ऐसा वाकया पेश आया हो, जैसे कि अभी आपके सामने बात भी करी, तो पहली रिवायत बैहकी ने शेबिल ईमान में और दूसरी रिवायत इबन अबी हातिम ने हजरत इबन अब्बास से नकल की है, वो ये है कि आस बिन वायल ने बतहाए मक्का, यानी मक्का का जो दरमियानी इलाका था, बतहा जो है वो पेट को कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द सिटी, तो मक्का मुकरमा का सेंटर ऑफ द सिटी वाला कोई एरिया था, तो वहां से एक बोसीदा हड्डी उठाई, ठीक है, क्यों पड़ी होगी कहीं पे साइड में कोई, तो उसको अपने हाथ से तोड़कर उसने रेजा रेजा किया, बड़े ये ताकतवर लोग होते थे, तो हड्डी को हालांकि हाथ से तोड़ना इतना आसान काम तो नहीं होता, हो सकता है या तो बहुत पुरानी हड्डी हो या ये कि मजबूत हड्डी हो, लेकिन ये बंदा उससे भी ज्यादा मजबूत हो, तो इसने रेजा रेजा कर दिया अपने हाथों से, मसल दिया उसको, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या अल्लाह इस हड्डी को जिंदा करेगा, जिसका हाल ये देख रहे हैं कि इसको तो मैंने यानी पाउडर बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ अल्लाह ताला तुझे मौत देगा, यानी उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो है ना एक लगता है जलाली कैफियत सी आई हुई थी इसकी हरकतों की वजह से, इसकी जिद और अनानियत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि अल्लाह तुझे मौत देगा, हालांकि सवाल वो कर रहा था उस हड्डी के बारे में, क्या फरमाया अल्लाह तुझे मौत देगा फिर जिंदा करेगा फिर तुझको जहन्नुम में दाखिल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मुमकिन है कि नबी अलैहिस्सलाम को इस एक बंदे के बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके खबर दे दी हो अल्लाह ताला की तरफ से कि ये बंदा जो है ना ये इसने ईमान नहीं लेकर के आना है, ठीक है ना, इसने कुफर पर ही मरना है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो कुछ खबरें फ्यूचर की कुछ खबरें अपने नबी अलैहिस्सलाम को पहले से बता दिया करते थे, जिसी की वजह से तो आज ये दज्जाल की हदीस के ऊपर जो इतनी सारी हदीसें हैं, कुर्ब कयामत की जो हदीसें हैं, वो सारी की सारी कहाँ से आई, राइट, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ्यूचर की कुछ बातें बतला दी तो नबी अलैहिस्सलाम ने आगे उम्मत को बता दी, उसी तरीके से इस एक बंदे के बारे में पहले से बता दिया गया होगा कि ये इसने ईमान नहीं लाना है, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना फिर उसको इस तरह का जवाब दिया कि अल्लाह तुझे जहन्नुम में दाखिल करेगा। फिर खसीम मुबीन के बारे में फरमाते हैं कि ये नुतफ़े हकीर से पैदा किया हुआ इंसान कैसा खुलकर मुकाबले पर आने लगा कि अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है, और गौरव अलाना मसलन कि यहाँ ज़रबे मिसल, जैसे उर्दू में भी ज़रबे मिसल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल बयान करना, उसको हम ज़रबुल मिसल कह देते हैं, इसी चीज़ को, ये तो एक एग्जाम्पल बन गई है, ज़रबुल मिसल बन गई है, तो यहाँ ज़रबे मिसल से मुराद इसका ये वाकया है कि बोसीदा हड्डी को हाथ से रेजा रेजा करते हुए इसके दोबारा जिंदा होने को महाल या मुस्तबाद समझा, ये तो बड़ी महाल बात है कि ऐसी हड्डी दोबारा जिंदा हो जाए, या बहुत ही बईद बात है, मुस्तबाद का मतलब होता है वेरी फार फेच्ड, بہت دور کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس کے بعد فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَ، یعنی اس مثال کے بیان کرنے کے وقت وہ خود اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ایک حقیر اور ناپاک قطرہ بے جان میں جان ڈال کر کے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی اس اصل کو نہ بھولتا تو ایسی مثالیں پیش کر کے قدرت الہیہ کے انکار کی جرت نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اصل یعنی اپنے اصل کو یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں پھر ہم کچھ محنت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہم کچھ بن جاتے ہیں، تو پھر نا انسان تو چونکہ نسیان سے بنا، رائٹ؟ نسیان ہمارے ایک فطرت کی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے ایکچولی بڑی فائدہ مند بھی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز کو یاد رکھیں تو پھر تو یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اگر یاد ماضی مجھے آتی رہتی ہے نا تو یہ تو میرے لیے عذاب ہے، مجھ سے حافظہ ہی چھین لیجئے آپ، میں بچپن کی باتوں کو، میں اپنے وہ اچھے گزرے ہوئے لمحات کو یاد نہیں کرنا چاہتا جو اب میرے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو نسیان ایک اللہ تعالی کی طرف سے رحمت بھی ہے، لیکن یہ نسیان جو ہے نا جب انسان اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو ریمائنڈرز جب ہی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ والے جو ہیں وہ ہمیں ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، قرآن ہمیں ریمائنڈ کراتا رہتا ہے کہ تمہاری حقیقت نطفہ ہے، تو قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن سیکھیں گے، تو یہ حقیقت ہمیں ریمائنڈ ہوتی رہے گی، رائٹ؟ ریمائنڈ ہوتی رہے گی۔ تو کم از کم آج اتنا تو ارادہ کر لینا کہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد ہم نے عربی سیکھنی بھی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کو مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنا بھی ہے، تاکہ ہمیں یہ ریمائنڈرز روزانہ کی تلاوت کے دوران ملتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی حقیقت، اس کے اوپر ایک واقعہ ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں کہ ایاز جو تھا وہ محمود غزنوی بادشاہ کا بہت ہی کلوز خادم بن گیا، تو باقی درباری جو ہے وہ اس سے حسد کرنے لگے کہ یہ ایسا باہر سے ایک لڑکا آیا اور بادشاہ کا اتنا مقرب بن گیا، تو انہوں نے نا ایک دن سوچا کہ ایاز کی شکایتیں لگاتے ہیں تاکہ یہ بادشاہ جو ہے نا ایاز سے بدگمان ہو جائے اور اس کی یہ جو خصوصی پریولیج دیتا ہے ایاز کو، یہ پریولیج دینا ختم کر دے۔ تو انہوں نے شکایتیں لگائیں، ان میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ یہ جو ایاز ہے نا یہ دن کے اندر روزانہ کچھ حصہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو جاتا ہے، اور وہاں پر نا اس کے پاس ایک الماری ہے، اس الماری میں کھول کر کے دیکھتا ہے، روزانہ یہ کام کرتا ہے، الماری کو کھول کر کے کچھ دیر کے لیے دیکھتا ہے، تو ہمیں ایک گمان یہ ہے کہ اس نے نا کچھ آپ کا خزانہ چوری کر کے اپنی اس الماری کے اندر رکھا ہوا ہے، تو اس خزانے کو روزانہ جا کر کے یہ دیکھتا ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ وہ اس الماری کے اوپر چھاپا مار کر کے دیکھیں کہ اس نے کیا کیا چیزیں چوری کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ نے نا جب ان کی ساری شکایتیں سن لی تو انہوں نے کہا اچھا چلو اب ہم ایاز سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ تم سارے کام کیوں کرتے ہو؟ تو جب بادشاہ نے ایاز سے یہ پوچھا نا کہ تم یہ والا کام کیوں کرتے ہو کہ تم اپنے کمرے میں جا کر کے الماری کو کھول کر کے روزانہ اس کے اندر دیکھتے ہو، تو ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں بہت غریب تھا، میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے، میرے پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی اور بڑے خراب میرے کپڑے تھے، تو جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ کا میرے اوپر اتنا انعام ہوا ہے کہ اب میں اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہوں اور اتنے اچھے میرے پاس جو ہے وہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں، میرے کام کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنی حقیقت نہ بھول جاؤں، کہیں آپ کے اس انعام اور اکرام کی وجہ سے میں تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں، تو اس وجہ سے نا میں نے اپنے وہ جو پھٹے پرانے کپڑے تھے، وہ ٹوٹی ہوئی چپل تھی نا، اس کو میں نے محفوظ کر کے اپنی الماری میں رکھا ہوا، اور میں روزانہ اس الماری کو کھول کر کے ایک بار دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اے ایاز ये है तुम्हारी असल, ये है जहां से तुम आए थे। अब जो तुम इज्जतों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, नेमतों में डूबी हुई जिंदगी गुजार रहे हो, ये तो बादशाह का इकराम है तुम्हारे ऊपर। ये तुम्हारी हकीकत नहीं है, ये तुम्हारी असल नहीं है। तो इस तरीके से मैं रोजाना अपने आप को याद दिलाता हूं ताकि मैं धोखे में मुबतला ना हो जाऊं, मैं अपनी हकीकत को ना भूल जाऊं। तो इसी तरीके से ईमान वाला रोजाना कई बार अपने आप को याद दिलाता है कि उसकी हकीकत क्या है। और जो ईमान वाला कुरान से जुड़ जाता है, कुरान खुद ही उसको याद दिलाता रहता है। राइट, जैसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि क्या है तुम्हारी हकीकत, इसकी हकीकत क्या है, नुतफा है। वضرب لنا مثلا ونسي خلقا, ये अपनी हकीकत को भूल गया। قال من يحيي العظام وهي رميم, और ये कहता है कि जी इस हड्डी को कौन जिंदा करेगा जबकि ये खोखरी हो गई, तो सीधा हड्डियां हो गई। قل, कह दीजिए, يحييها الذي انشاها اول مره, इस हड्डी को वही जिंदा करेगा जिसने इसको पहली दफा जिंदा किया था। वह हुआ बिकुल खल्क अलीम, और वो हर चीज को बनाता है और हर चीज को जानता है, उसके इल्म से कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख़ज़र नारा, ये तो वही है कि जो के सरसब्ज दरख्त में से नार को निकालता है, आग निकालता है। फ़ाइज़ा अंतुम मिनहु तूक़िदून, फिर अब तुम उससे इसको, यानी तुम उससे सुलगाते हो। तो उसकी तफसीर में जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ने से पहले, जो आप लोगों ने सवाल या क्वेश्चन लिखे हैं, जो यानी कमेंट लिखे हैं, वो पढ़ लेते हैं कि सही हदीस के लिए एटलीस्ट कितने रावी होने चाहिए। सही हदीस के लिए एक रावी होना काफी है, रावियों की तादाद से हदीस सही नहीं बनती है। अगर कोई हदीस ज़ईफ़ है तो कैसे पता चलेगा कि ये ज़ईफ़ या मनघड़त है? हदीस का ज़ईफ़ और मनघड़त होना जो है वो उसकी शक्ल देख करके पता नहीं चलता, बल्कि उसके लिए जो असमाउल रिजाल की जो मेहनत करी है ना उलमाए कराम ने, तो उस असमाउल रिजाल की मेहनत की तरफ रुजू करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए बाकायदा किताबें भी मौजूद हैं जो कि उलमाए दीन को उनके यानी उसूल हदीस के टॉपिक्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो हम किसी हदीस को देख करके उसकी शक्ल सूरत से उसके अल्फाज से नहीं पता कर सकते। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा गहराई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से जैसे कि होना जी हजरत शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये हदीस गरीब है या ये हदीस ज़ईफ़ है। ठीक है, तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी की सारी रिसर्च करी हुई है, तो उस रिसर्च की बुनियाद पर वो हमें बताते हैं। तो हमें ये खबर जो है कि ये हदीस ज़ईफ़ है कि ये हदीस सही है, ये इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से लेनी होती है। ठीक है, या ये कि आप खुद इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे बन जाए। ठीक है ना, खुद जो है वो इतना पढ़ें, इतनी तहकीक करें, और कि आप खुद जाकर के हदीस को जो है उसकी छांट फटक करना शुरू हो जाए और फिर बताना शुरू हो जाए, इस काबिल हो जाए कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ़ है। ठीक है, तो या तो खुद बन जाए, और अगर खुद नहीं बन सकते तो फिर उन पर एतमाद करके उन्होंने जो रिसर्च करी है उससे फिर सुन लें कि जी ये हदीस जो है वो सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है। ये सिंपल सा जवाब है जो कि हर चीज़ पर अप्लाई हो सकता है। या तो खुद डॉक्टर बन जाए, ठीक है, और अपना इलाज जो है वो खुद कर लें, या दूसरों का इलाज कर लें, या खुद नहीं बन सकते तो भाई डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाएं। ठीक है, यही चीज हर जगह अप्लाई होती है। सही हदीस के लिए एटलीस्ट कितने रावी होने चाहिए? हाँ, तो ठीक है, ये तो रिपीट हो गया। ठीक है जी, तो ये जो सरसब्ज दरख्त है, तो इसकी भी तफसील यहीं से पढ़ लेते हैं कि अरब में दो दरख्त मारूफ थे, पेज नंबर 412 के ऊपर, एक मर्ख दूसरा अफार। अरब लोग इन दोनों दरख्तों की दो शाखें मिसले मिसवाक के काट लेते थे, जैसे मिसवाक की डंडी होती है उस तरीके से इसकी शाखों को काटिया करते थे, जो बिल्कुल हरी और ताजा पानी से भरी होती थी, यानी बिल्कुल उनके अंदर जूस भी मौजूद होता था। मिसवाक के अंदर कितना जूस होता है। तो एक को दूसरी पर रगड़ने से आग पैदा हो जाती थी। अजीब, हमने तो कभी इस तरह की चीज नहीं देखी, हम तो पत्थर से रगड़ के आग पैदा करना उसको बड़ी अजीब बात समझते हैं, तो अरब में ऐसे जो दरख्त हैं बाकायदा उनकी लकड़ियों को रगड़ने से आग पैदा हो जाती है। हरे दरख्त से आग पैदा करने में इसी तरफ इशारा है, तफसीर कुर्तुबी के अंदर ये बात अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने लिखी है। और अगर दरख्तों के आखिरी अंजाम को देखा जाए तो हर दरख्त शुरू में हरा भरा होने के बाद आखिर में खुश्क होकर आग का जरिया बनता है। ठीक है, खुश्क होने के बाद तो वैसी लकड़ी जो है वो आग के अंदर बड़ी तेजी से आग पकड़ लेती है, تو اس طرح ہر درخت بھی اس کا مصداق ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں بظاہر یہی مراد ہے. افرائیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، سورہ واقعہ کی جو آیت ہے، یعنی کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے جس کو تم سلگا کر اپنے کام میں لیتے ہو؟ کیا اس آگ سے شعلہ بننے والے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ کیونکہ آگ تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہم نے کریٹ کری ہے، ہم نے رگڑا، ہم نے جو ہے وہ تیلی لگائی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو آگ کو تو انسان کو دھوکا لگ سکتا ہے کہ آگ کو اس نے پروڈیوس کیا، ٹھیک ہے، لیکن درخت کی جو پروڈکشن ہوتی ہے تو درخت کی پروڈکشن جو ہے وہ تو انسان خود نہیں کر سکتا نا. درخت کے لیے تو آپ نے بس ایک ٹہنی لگا دینی ہوتی ہے، پھر وہ اگتی ہے نہیں اگتی آپ تو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو. یا بیج بو دیتے ہیں، بیج میں سے یعنی پھٹ کر کے کوپل نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی وہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ مثال بیان کی کہ تاکہ انسان کو دھوکہ نہ رہے کہ بھئی درخت تو تم نے پیدا نہیں کیا نا، اس کے اوپر تو تم کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے پیدا کیا. لیکن آیت مذکورہ میں چونکہ شجر کے ساتھ اخور کی صفت بھی ذکر کی گئی ہے، اس لیے یہاں ظاہر یہی ہے کہ وہ خاص درخت مراد ہیں جن سے ہرے بھرے ہونے کے باوجود آگ پیدا ہوتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں تو انسانی مصنوعات کی طرح ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پہلے مواد جمع کریں، را مٹیریل جمع کریں، پھر اس کے لیے کاریگر بلوائیں، پھر ایک مدت تک کام کر کے وہ چیز تیار ہو، بلکہ وہ جب اور جس وقت جس چیز کو پیدا فرمانا چاہیں ان کو صرف حکم دے دینا کافی ہوتا ہے کہ پیدا ہو جا. کن، کن کا مطلب ہو جا، تو جس چیز کو یہ حکم ملتا ہے وہ فوراً اس کے حکم کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے، فوراً وجود میں آ جاتی ہے. اب کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھی بہت ساری چیزیں تو تدریجاً وجود میں آتی ہیں، جیسے آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے 6 دن اور 6 راتوں میں پیدا کیے، ٹھیک ہے، تو کن سے ایک دم تو پیدا نہیں ہو گئے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کی تخلیق دفعی اور فوراً ہی ہو، ایک دم ہو، بلکہ حکمت خالق کے تابع جس چیز کا فوری طور پر پیدا ہو جانا مصلحت ہے وہ فوری طور پر بلا تدریج مہلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا پیدا ہونا کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر بتدریج مناسب سمجھا گیا وہ اسی تدریج کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے، خواہ اس کی صورت یہ ہو کہ اس کو پہلی حکم میں خاص تدریج کے ساتھ پیدا ہونا بتلایا گیا ہو یا ہر مرحلے پر اس کو جداگانہ حکم کن کا خطاب ہوتا ہو. یعنی جو چیزیں ایک دم سے وجود میں آ جاتی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچہ تو نہیں بنایا نا کہ بچے سے پھر وہ جوان ہوئے، جوان سے پھر وہ ادھیڑے عمر کے ہوئے، ٹھیک ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کو بس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے مینوفیکچر کیا، مینوفیکچر نہیں بلکہ تخلیق کیا، اور پھر کن کہہ یعنی کن کہہ کر کے ان کا مٹی کا پتلا بھی بنایا ہوگا، اور اس کے بعد اپنی روح پھونک دی، وہ ایک دم سے جو ہے وہ زندہ ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تدریجن بنایا، بہت ساری چیزوں کو، عالم خلق جس کو کہتے ہیں، عالم خلق کی ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ تدریجن بنایا. لیکن تدریجن بنانے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جی کوئی دیر لگی، اللہ تعالیٰ کا کن کا حکم ہوا اور کن کے بعد جو ہے وہ دیر لگی، بلکہ اس طرح سے ہوا کہ کن کہہ کر کے اس کا ایک درجہ بنا، ٹھیک ہے. اب اس ایک یعنی کن کا مقصد یہی تھا، ایک درجہ بنانا صرف مقصد تھا، ٹھیک ہے. اب اگلے درجے میں اس کو پہنچانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا الگ کن، ٹھیک ہے نا، الگ کن ہوا، اس سے اگلا درجہ بنا، کیونکہ ہر کن کا مقصد صرف ایک درجہ بنانا تھا، ٹھیک ہے. تو یعنی ہر سٹیپ آف دا وے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کا حکم ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ تدریجن آگے کی طرف بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو تو ہم تصور نہیں کر سکتے نا کہ یہ کتنے درجے ہوتے ہوں گے، کہ ہاؤ مچ از ون درجہ، درجہ مینس ون ڈے اولڈ، یا درجہ مینز ون سیکنڈ اولڈ، یا درجہ مینز ون منٹ اولڈ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی، تو احاطہ نہیں کر سکتے. جو دو نام بتائے درخت کے آپ نے وہ دوبارہ بتا دیں. نام میں جو پڑھ رہا ہوں نا، آپ شاید نئی طالبہ ہیں، تو ہم تفسیر معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اس کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ والیوم نمبر 7 ہے، ساتویں جلد ہے، صفحہ نمبر 412، ساتویں جلد کا صفحہ نمبر 412، اس میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، مرخ اور عفار، میم را خا مرخ اور عفار، عین فا الف را عفار، ٹھیک ہے. چاہیے کہ اس تفسیر کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کرنے، ہم نے اس کے لنکس بھی بھیجے ہوئے ہیں گروپ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں تو ان کو دو عالموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک عالم خلق کہلاتا ہے اور دوسرا عالم امر کہلاتا ہے. عالم خلق اور عالم امر کے درمیان، امر کے درمیان یعنی حمزہ میم را کے درمیان فرق یہی ہے کہ عالم امر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ یعنی بغیر تدریج کے ایک دم سے وجود میں آ گئیں کن کے حکم کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور پوری کی پوری جہنم جنت بن گئی، پوری کی پوری جہنم بن گئی، پورا کا پورا عرش بن گیا. ٹھیک ہے، فرشتے بن گئے، یہ سارے کے سارے عالم امر کی چیزیں ہیں. اور عالم خلق میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن ہر درجے کے لیے الگ کن. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے تدریجن جو ہے وہ چیزیں عالم خلق کے اندر بنی. عالم خلق کے اندر زمین، آسمان، بادل، درخت، انسان کا جسم، ٹھیک ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ ساری چیزیں عالم خلق کے اندر ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یاسین کی تفسیر جو ہے وہ ہم نے شروع سے لے کے آخر تک معرفت القرآن سے آج پڑھ لی ہے. تو اگر کوئی سوال ہے اس سے متعلق تو آپ کل کی کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ادروائز کل ہم دوسری سورہ شروع کریں گے جو کہ ایکچولی ابھی کلیئر نہیں ہے کون سی والی شروع کریں گے، لیکن آپ کو بتا دوں گے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم.